कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्य निन्दादि शून्यं हृदमीप्सित संगलभ्या. वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. वन शुड ऑफर हम्बल ओबेसेंसेस टू द डिवोटी हु हैज अंडरगॉन स्पिरिचुअल इनिशिएशन एंड इज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग द डीटी. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. Hare Krishna. Srila Rupa Goswami bade kripa purvak hum Gaudiya Vaishnavon ko आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सुरक्षित रूप से और जल्द प्रगति करने के लिए ये उपदेश अमृत दिए हैं, जहां सिर्फ 11 श्लोकों के अंदर एकदम बद्ध अवस्था से लेकर परिपूर्ण राधा कुंड में निवास करना वहां तक ले गए, एकदम सुपर फास्ट एलिवेटर जैसा ही, बिना सीढ़ी चढ़े अगर ये 11 में से खास करके पहला 8 इति उपदेश सारम 8वां में खत्म हो जाता है. बाद में जो हम लोग पद दिया गया उसकी महिमा क्या है वो लास्ट 3 में बताया गया, 9, 10, 11. प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे षड गोस्वामीगण, और चैतन्य महाप्रभु आए सर्वश्रेष्ठ भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो देने के लिए, और उन्होंने जो राधा और कृष्ण का परम प्रेम जो है वो दिया है, जो भक्ति की पराकाष्ठा है एक्चुअली, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, बट बड़े कृपा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है. और रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति तबे हम बुझावो से युगल प्रीत. अगर वो प्राप्ति होनी है हमें, राधा कृष्ण की भक्ति जानना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अगर नहीं गए तो कोई समझना नामुमकिन है प्रैक्टिकली. और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलनी है तो षड गोस्वामियों के द्वारा, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, उन्होंने सारे शास्त्रों का अच्छी तरह, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सार दे दिया. दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को 10 दिन, सनातन गोस्वामी को 2 महीना है. एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने 5 लोगों से बातचीत किया, सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा मायावाद को एकदम ध्वंस कर दिया, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी संबंध ज्ञान के ऊपर, भगवान की सुंदरता क्या है, हम कौन है, ताकि हम आकर्षित हो जाएं, वो संबंध आचार्य हमारे, और रूप गोस्वामी को दिया अभिधेय ज्ञान, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस का आस्वादन करते हुए कैसे प्रगति करे, संबंध स्थापित करने की, स्थापित करने के बाद उसको रीएस्टैब्लिश अभिधेय. और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो प्रयोजन आचार्य है वो रामानंद राय के संवाद में हुआ. तो ये 5 संवाद, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद, सनातन गोस्वामी संबंध ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी के साथ अभिधेय ज्ञान, और रामानंद राय के साथ प्रयोजन ज्ञान. पूछे प्रयोजन सबसे श्रेष्ठ क्या है, बोलो, पूछे पूछे उनसे निकाल निकाल कर सबसे श्रेष्ठ चीज जो है स्थापित किया, और ये दोनों मायावाद को खंडन करके प्रकाशन सरस्वती. तो ये 5 एक्चुअली टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आप देखेंगे तो 5 संवाद है, बस यही सार है, इसके द्वारा सब कुछ दे दी. तो रूप गोस्वामी ने सद्धर्म संस्थापको नाना शास्त्र, उनको कहा कि आप अभी शास्त्रों से ढूंढ कर जो मैंने तत्व बता दिया उसको स्थापित करो, शास्त्र के आधार पर स्थापित करो. तो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकम्. लोगों का नाम हितकारी, लोगों के हितकार के लिए हमें वो तपस्या करने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा शास्त्र में कहां कहां ढूंढना है, कोई जरूरत नहीं, उसका सार निकाल के दे दिया हम लोग को, बस ले लो 11 श्लोक ये पकड़ो, इतना सिंपल क्रैश कोर्स इनटू भक्ति होगा। लोगों को क्विक क्रैश कोर्स चाहिए, सब चीज में क्रैश कोर्स, क्योंकि कलयुग है, जीवन भी क्रैश कोर्स हो गया, इतना ही हो गया है, कब मर जाएंगे कुछ नहीं मालूम, आयु कम हो गई, बुद्धि कम हो गई, सब कुछ कम हो गया, सब तो कम हो गया है, तो इनको अगर क्रैश कोर्स नहीं देंगे तो कोई कोर्स नहीं ले पाएंगे लोग, तो इतने कृपा पूर्वक वो 11 श्लोक के अंदर सब कुछ दे दिया। पर क्योंकि इतने कम इसमें दिए हैं तो एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई इंपॉर्टेंट लाइटनिंग टेलीग्राम उनको भेजना है, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एक एक शब्द चुन चुन के हम लोग डालेंगे, बार बार उसी चीज को नहीं बोलेंगे। तो यहां छह वेग को कैसा दमन करना है, बद्ध अवस्था से बाहर निकलना है तो कैसा निकलना है, पहले पहले बताए वाचो वेगम मन से क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थिति, जो तीन गुणों से बद्ध है तो वेग आती है, ऐसा जैसा खाने के बाद कई घंटों के बाद वेग आती है रिलीज करने की, एक नंबर दो नंबर जाने के लिए वेग आती है उस समय, और कुछ भी बोलना ही जान, मतलब इमीडिएटली उसको जाना ही पड़ेगा, और सब चीज हमको उस समय एकदम निरस लगता है, कुछ भी सामने रखो अभी नहीं पहले एक मिनट मेरे को। इस तरह से जब तक तीन गुण है हमारे अंदर काम आ जाता है तो सारा भक्ति वक्ति सब साइड में रख देते, पहले वो वेग को करना है, क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर वेग उपस्थ वेग। एक्चुअली ये सारे वेग जो है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है, मनसा वाचा कर्मण, मन वाणी और शरीर। वाचो वेगम बोलने की जिह्वा का वेग, मनसा क्रोध, मन और क्रोध एक्चुअली मन का ही वेग है, अच्छा लगा तो आसक्ति, नहीं लगा अच्छा लगा तो क्रोध, नहीं मिला तो क्रोध, मिल गया तो आसक्ति उसने। और जिह्वा उधर उपस्थ, एक ही लाइन में एक कंट्रोल में चला गया तो तीनों कंट्रोल चला जाता है। एतान वेगान यो विषहित धीर है, जो इसको नियंत्रण करता है वो गोस्वामी, त्रिदंडी गोस्वामी, त्रिदंडी मतलब ये तीन दंडा जो है मन बुद्धि का मनसा वाचा कर्मण, जिसने उसको नियंत्रण किया है वो स्वामी। हमको नियंत्रण करने की कोई मतलब सन्यासी बनने की, त्रिवेंडी गोस्वामी होगा तभी नहीं करने की जरूरत नहीं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है सन्यासी चे योगी चे न निरग्रह न चाक्रिय। हमारा जो कर्तव्य है उसको मतलब ये वेगों को सहन करके, और कितना कितना देर सहन करेंगे, ज्यादा नहीं होगा, उसको पॉजिटिवली दिशा में डालना पड़ेगा। तो वो होने के बाद फिर अत्याहार प्रयास से प्रजल पोनी माग्रह, सबसे खतरनाक भक्ति के लिए अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा संग्रहित करना, प्रयास जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, प्रजल जरूरत से ज्यादा फालतू बड़बड़ करना, नियमाग्रह नियम को एकदम ढीला छोड़ देना या सिर्फ नियम को पकड़ के रखना और सार भूल जाना, जनसंघर्ष ऐसे लोगों का संग करना जो अनुकूल नहीं है, लौल्यम च ग्रीडीनेस षडगुरु भक्ति विनश्यति। अच्छा ये चार छह चीज है, इसमें एक चीज कॉमन है, क्या? भोग करने की इच्छा, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, बोलने बहुत आनंद आता है हमको, फालतू चीज बोलने में सुनने में, नियमाग्रह नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करके सबको हम लोग हम सबसे श्रेष्ठ है तुम सब पतित है, या नियम को ढीला छोड़ देना बस भोग करने के लिए, जनसंघर्ष ऐसे लोगों का संग करना जिसे हमारा भोग करने की प्रवृत्ति बढ़े, ऐसी चीजों को इकट्ठा करना जो हमको लालच की तरह, तो ये सारा चीज का सार है भोग करने की प्रवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना। वो करने के बाद फिर अभी बढ़ना है ना, ठीक है, ब्रेक तो छोड़ दिए, ब्रेक को लगा के रखे थे अभी तक, एक्सेलेटर भी दबा रहे ब्रेक भी दबा रहे, तो ये दो श्लोक पालन करने से ब्रेक के ऊपर से हाथ निकल गया, पैर निकल गया, अभी एक्सेलेटर दबाने के लिए उत्साह निशा धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन आसंग वृत्ति है षडगुरु भक्ति प्रसिद्ध दी, बढ़ना कैसे चाहिए। उसके बाद कहते हैं अगर ये चीज करना है अगर ये छह अनुकूल चीजों को प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में उतारना है, तो तभी होगा जब भक्तों का संग रहेंगे। तो भक्तों का संग कैसा किया जाए, उसीलिए चौथा श्लोक बताता है। चौथा श्लोक क्या बताता है कि ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं। प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम। तो अगर भगवान से प्रेम कर रहे हैं और भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं होगा एक्चुअली। तो प्रेम करना जरूरी है, पर किससे प्रेम करना है, कितना प्रेम करना है, कैसा प्रेम करना मालूम होना चाहिए। और प्रेम का लक्षण क्या है, तो छह आदान प्रदान बताया गया। ददाति प्रतिगृहणाति, कुछ देना कुछ लेना। एक्चुअली देना वो मूल्य उतना चीज नहीं है, जो चीज देते, एक छोटा सा करताल दे दिया, एक पेन दे दिया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसके पीछे हमारा एक हृदय है, उसको उसके बारे में हमने सोचा, उसके बारे में हम, मतलब एक हृदय का एक अंश हम लोग दे रहे हैं। उसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें बहुत स्मरण किया, तुम उसको बहुत प्रिय हो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक स्थान है, इसका मतलब यही है। एक देना किसी को, उपहार देना मतलब, तो फिर वो बोलता हाँ तुमने दिया तो इसीलिए मैं भी दे रहा हूं, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान है। इस तरह से हमारा हृदय थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सबको अकोमोडेट करना है, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है, कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा है, तो ऐसा बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ददाति प्रतिगृहणाति, और जब हृदय में स्थान है तो अंदर खोल के हृदय से बोलेंगे भाई देखो तुम्हारा, हमारे हृदय में ये है, तुमको क्या लगता है। इस तरह से आदान प्रदान, गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव, प्रसाद लेना प्रसाद देना, षड्विधं प्रीति लक्षणं। तो ये जरूरी है कि आदान प्रदान हो, पर किसको देना चाहिए और किसको हृदय नहीं देना चाहिए वो भी मालूम होना चाहिए। प्रभुपाद जी वो कहानी बोलते थे, जो बंदर और मगरमच्छ का आपने सुना होगा, तालाब के बगल में मगरमच्छ रहता था, ऊपर बंदर में जामुन का पेड़ था उस पर बंदर रहता था, तो उसे मालूम होगा वो बंदर हमेशा खाता था और मगरमच्छ को भी खिलाता था। तो उसकी पत्नी बोली अरे ये जामुन इतना अच्छा है, तो जो बंदर खाता है उसका हृदय कितना होगा, खा खा के फर्स्ट क्लास, उसको खाने का मेरे को। बोला नहीं नहीं मेरा दोस्त है, अरे दोस्त है, अगर मेरे को स्वीकार करना है तो फिर उसको दोस्त को ले आओ। तो उसने बोला ठीक है, और बंदर बैठ गया उसके ऊपर, और बीच सरोवर में जाने के बाद बोला अभी देखो अब अंदर तो जाने वाला हूं, तो बता दे तेरे को कि एक्चुअली तेरे को फिस्ट के लिए नहीं बुलाया, तेरा फिस्ट होने वाला है। तो बंदर ने बोला किस लिए, बोला हृदय के लिए। पहले क्यों है, बोला टांग के आ गया मैं, ले रहा हूँ, भेज देता ना, भेज देता मैं पार्सल कोरियर। बोले ठीक है, तुरंत चला गया और ऊपर छलांग मारा, बोला बस आज से बहुत हो गया तुम्हारे साथ दोस्ती। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा भक्तों के साथ हम लोग हृदय लेके आना चाहिए, और जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो वही टंगा के घर में अल्टर के पास टंगा के हृदय को जाना चाहिए। मतलब वहां हमको हृदय नहीं देना चाहिए, वहां जितना काम हो गया हो गया। अगर दुकान में जाते हैं उसको हृदय खोल के आपको क्या लगता है मेरा जीवन का उद्देश्य है, कोई भी उसको बेचने की जरूरत नहीं, दूध बेचने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है सर, कोई मायावादी को, कोई कर्मी को, इत्यादि को हृदय खोलने की जरूरत नहीं, वो यहीं टंगाएंगे बस। पर जब भक्त लोग हैं तो वो हृदय खोलेंगे पूरा, क्योंकि वो नहीं किए बिना हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। एक्चुअली एक जो कनिष्ठ भक्त, तीन प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ मतलब वो सिर्फ भगवान को देखता है बस, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको आता नहीं है, आम तौर पे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको आता नहीं है, उसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ मतलब ऐसा नहीं कि उसको दीक्षा नहीं हुआ है, कनिष्ठ का मतलब है जिसको बस भगवान और मेरा रिश्ता बस, दूसरी दुनिया से उसको भक्तों के साथ व्यवहार कैसा करना है, आमतौर पर लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आता उसको। तो कनिष्ठ अधिकारी पर रहेंगे तो हम अपराध कर बैठेंगे, भक्तों को सही तरह से सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, और आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। और आदान प्रदान करना है, ये छह प्रकार का ये होना ही चाहिए। अगर होना है तो किसके साथ होना है, किसको हृदय नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसके साथ हृदय खोलना चाहिए, किसके साथ बंद करके रखना चाहिए, यह सब मालूम होना चाहिए। इसीलिए अगले श्लोक में बोलते हैं वैष्णव में भी अलग अलग स्तर है किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कृष्ण यदि ऐसे बीरी तब मनसाद्रिय, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकल रहा है, जो कोशिश कर रहा है भगवान का नाम लेने के लिए, मनसा अद्रिय दीक्षास्ति चेत, अगर दीक्षा हो गया है भजन तमीशम और भगवान की सेवा में गुरु महाराज की आज्ञा से लगा हुआ है तो प्रणति भिष्य, प्रणाम करना चाहिए उसको, झुककर प्रणाम करना चाहिए। आपको आदर सबको दे रहे हैं पर अलग अलग कैसा आदर देना चाहिए। और शुश्रूषया, शुश्रूषया मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण करना, और हृदयमीप्सित संग लब्ध्या, ऐसे लोगों का संग करना, और शुश्रूषया मतलब उनसे सुनना और उनकी सेवा करना। किनके साथ? भजन विघ्नम, जो भजन में एक्सपर्ट हैं, बहुत दक्ष हैं, भगवान की मतलब भक्ति में एकदम फिक्स्ड अप हैं, और अनन्य, अनन्य मतलब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और अन्य निंदादि शून्य, उनके हृदय में निंदा करने की जो ये है भावना वो है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का संग लेना, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना, ऐसे व्यक्ति से सुनना। तो इसीलिए हमको मिनिमम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो हम लोग अपराध कर बैठे, हम लोग कंटिन्यूसली कनिष्ठ में ही रहेंगे, कनिष्ठ में ही रहेंगे, नहीं हो सकता है। अगर प्रगति करना है तो कम से कम मध्यम अधिकारी में आना है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ भगवान को मंदिर में देखता है और कुछ नहीं देखता, बस तो प्रगति नहीं कर पाएगा वो। और प्रगति करना है तो भक्तों का संग करना है, और संग करना है तो थोड़ा होशियारी से संग करना है, तो अपराध हो जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते अपराध हो जाएगा इसलिए भक्तों का संग नहीं, ना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा है संग ही मत करो तो अपराध ही नहीं होगा, पर अपराध नहीं होगा पर प्रगति भी नहीं होगा। भक्तों का संग करना जरूरी है, ये छह प्रकार का आदान प्रदान होना ही चाहिए। तो इसीलिए बहुत होशियारी से डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, ऑफकोर्स ये भेदभाव क्यों करना चाहिए? आप बोलेंगे हमको बोला गया कि हमको किसी प्रकार भेदभाव नहीं, सबको समान दृष्टि, समदृक पंडिता समदर्शी ने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्ती सबको समान देखना चाहिए बोले, और यहां बोल रहे भेदभाव करो, अलग इसको मन से करो, उसको झुक के करो, उसको एकदम दंडवत करो, एकदम ऐसा 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 तीन क्यों भेदभाव करने बोल रहे हैं? ये जो भेदभाव है ये चुपचाप बैठ के ये तीनों में से ये कौन ज्यादा शुद्ध भक्त है, कौन थोड़ा नीचा है, वो करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, वो भगवान को मालूम है बस, और उसमें उनमें और भगवान के बीच है, हमको कोई उसमें ना कराने की जरूरत नहीं, कौन इसमें से शुद्ध है, कौन इसमें कितना पानी में है। और हमको ये पता करना चाहिए ताकि किसको हमारा हृदय दे, किसको हमारे हृदय को बचा के रखे, ये सब भेदभाव करने के लिए ये सब मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम किसको संग करें या ना करें, इसलिए हम लोग अगर भेदभाव कर रहे हैं ओनली फॉर दैट सेक, और वो भी बहुत ही विनम्र भाव से, प्रार्थना पूर्वक भावना से अगर हम ये कर रहे हैं भेदभाव, ताकि किसका संग करें, किसको हृदय खोले और किसका सेवा करें, तो ठीक है। और अगर फालतू में ऐसे बैठ के ये चारों में से देखेंगे कौन सुंदर है, कौन कितना, ये नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये भगवान और उनके बीच बस। तो ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है, तो कम से कम हमको मध्यम अधिकारी होना ही चाहिए। और मध्यम अधिकारी होना मतलब चार प्रकार का व्यवहार, ईश्वरीय तद अधीनेशु बालिशेषु दुष्टसु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी मतलब ये करना ही चाहिए चार, ईश्वर भगवान के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तद अधीनेशु भगवान के शरणागत हुए हैं जो भक्त हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बालिशेषु जो नादान है, और द्विषत्सु जो द्वेष करते भगवान से उनके प्रति क्या है, प्रेम भगवान के प्रति प्रेम, उनका नम्रमय नम्र ध्यान पूर्वक सेवा। तद अधीनेशु जो उनके अधीन है भक्त, उनके साथ मैत्री मित्रता करना बहुत जरूरी है। और बालिशेषु, बालिशेषु में प्रेम मैत्री कृपा, अपने आप को विस्तृत करना, अपने आप को एक्सटेंड करके उनको प्रचार करना। और द्विषत्सु जो द्वेष करते भगवान से, अपराधी हैं या नास्तिक हैं, जो मायावादी हैं भौतिकवादी हैं, उनसे उपेक्षा, दूर से प्रणाम करना, उनका संग नहीं करना। ये करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग मध्यम अधिकारी नहीं बनेंगे और मध्यम अधिकारी के बिना हम लोग प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों करना जरूरी है, और ये चारों अगर नहीं करेंगे तो एक्चुअली भगवान का प्रेम हमारे में नहीं है। हम बोलेंगे ऐसा कैसा? सुनिए, अगर भगवान के पास प्रेम है, भगवान के साथ हमारा प्रेम है, ऑफ कोर्स उसको प्रेम प्राप्त करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। प्रेमा पुमार्थो महान, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ शिरोमणि है प्रेम। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के भक्तों के साथ प्रेम नहीं करते तो वो प्रेम कैसा है? भगवान से प्रेम करते हैं पर उनके नादान बच्चे जो तड़प रहे हैं उनको हम लोग उन पर दया नहीं दिखाएंगे तो भगवान के प्रति कैसा प्रेम है? बाप से प्रेम है और बच्चे को मुंह पे लात मारता है कोई तो कैसा प्रेम है? या बाप को जो प्रिय है उसके साथ हमारा दोस्ती नहीं है, उसे हम द्वेष करेंगे तो फिर कैसा प्रेम है भगवान के साथ? और बाप को जो गाली देता है उसके साथ हमारा द्वेष नहीं है तो प्रेम नहीं है? मायावादी को भी जाके गले लगाएंगे तो प्रेम नहीं है? हम किसी से प्रेम करते हैं और उससे कोई द्वेष करता तो हमसे भी उससे द्वेष करते हैं। आप बोले ऐसा कैसे? भक्तों को द्वेष नहीं करना चाहिए, इसका क्या उत्तर देंगे आप? भक्तों को द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। तो यहां बोल रहे द्वेष करना चाहिए, उपेक्षा, उपेक्षा द्वेष नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा द्वेष मतलब अच्छा द्वेषी जनों से हम लोग उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों को नकारते हैं। ऑफ कोर्स उनका व्यवहार एक ही है, भगवान का व्यवहार छात्र में एक प्रश्न था, असुरों का पक्ष देवताओं का पक्ष लेते और असुरों को मार देते, ऐसे कैसे भगवान? तो क्या भेदभाव करते हैं? नहीं, समान सुहृद, वो सुहृद है, सबके मित्र हैं, पर उनको जब मारते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। इसी तरह से नारद मुनि, नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भक्तों का वरदान देना और शाप देना दोनों उनका कृपा है। नलकुबेर और मणिग्रह को देखे बेचारे इतना बुरी तरह से फंस गए, इनका उद्धार कैसे हो? पेड़ बन जाओ तुम लोग। तो भक्त जो है जब उपेक्षा करता है ऐसे लोगों का, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रचार करने जाए और क्या है वो, पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांति। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर सांप को केला और दूध पिलाओ हर रोज तो उसका विष ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको जाकर प्रचार करेंगे नाम की महिमा, वो बोलेगा और ज्यादा उल्टा, पहले तो चुपचाप बैठा हुआ था, शेर चुपचाप बैठा हुआ तो उसको जाके भड़का के बाद में भड़ा करेगा तो बोले चिल्लाता है देखो, बोले नहीं बोल, तो चुपचाप सोया हुआ उसको क्यों भड़काते हो तुम? ठीक है दूर रहो, दूर से प्रणाम करके चले जाओ, पत्थर मारना और पत्थर मारने वो चिल्ला दो, बोले चिल्लाता है असुर है ये, कोई करने की जरूरत नहीं ऐसे, तो उसे दूर से प्रणाम बस उपेक्षा। तो ये करना बहुत जरूरी है ताकि हम सुरक्षित रहे एक, और उनका अपराध ना बढ़े। भक्त का हृदय जो है एक कुएं के समान है, थोड़ा इसके बारे में विचार कीजिए, एक उदाहरण के बारे में थोड़ा विचार कीजिए आप। भक्त का हृदय जो है एक कुएं के समान है और कुएं में पानी बहुत है, एकदम अमृत जैसा शीतल पानी भरा हुआ है, और पूरी दुनिया रेगिस्तान जैसी है, सब सूखा हुआ है और सब पानी के लिए तड़प रहे, और हम कहेंगे कि ये पानी को सील मार के हम लोग रखेंगे बस, और कोई नहीं, मरो तुम लोग, तो दया नहीं हो। तो भक्तों के हृदय में भगवान के कृष्ण कथा का, कृष्ण कथामृत, कृष्ण नामामृत, कृष्ण लीलामृत, ये सब अमृत भरा हुआ है। हम लोग हर रोज नाम जप करते हैं, लीला पान कर रहे हैं, ये सब अमृत है। तो हृदय में अमृत भरा हुआ है और पूरी दुनिया प्यासी है और हम लोग चुपचाप हमला अमृत खा के चुपचाप बैठे हुए हैं, तो एक गलत बात है। तो ये जरूरी है कि पूरी दुनिया प्यासी है और उनको पानी चाहिए, और हमारे पास है, हमारे कुएं में पानी है, हमारे भक्त हैं उनके उनके गांव में उनके कुएं में ही पानी है, और किसी के कुएं में नहीं, तो कभी कभी थोड़ा दे देते उन लोगों को, चलो लाओ। तो ये प्रचार करना बहुत जरूरी है। सबका हृदय सूखा है क्योंकि कृष्ण के बारे में उनको मालूम नहीं है, उनका हृदय एकदम ड्राई, पुनः पुनः चरवित चरवनाना, उसी में पानी डाल के निकाल रहे हैं, कुछ आएगा क्या? बकेट फेंक रहे तब से कुछ नहीं आ रहा। तो ये जरूरी है कि कृपा, कृपा करना जरूरी है, प्रेम मैत्री कृपा, कि जिनके पास कृष्ण नहीं है उनको अगर नहीं करेंगे तो हमारा हृदय बहुत कठोर हो गया, और जिसका हृदय कठोर हो गया उसके हृदय नाम कैसा होगा? तदश्म सारम हृदय बतेदम, उसका हृदय तो एकदम पत्थर के समान है, कितने लोग तड़प रहे हैं और चुपचाप बैठा हुआ है वो। तो प्रचार करना जरूरी है 100%। पर अगर ये आदमी बोला आओ मेरा कुआं में पानी है, और सब लोग अपना अपना पंप डाल के चालू कर दिए, सब घर वाले लोग आके आपके कुएं में अपना अपना क्या बोलते हैं पाइप डाल दिया और एक मोटर लगा दिया, तो पूरा खाली हो जाएगा, आपका सूखा पड़ जाएगा। हो सकता है, आपने देखा हो, पता नहीं मेरे को, एक कुआं में अगर 50 ट्यूबवेल डाल के सब लोग अपना अपना मोटर डाल दे, तो कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, जा रहे सबको दे रहे, बाद बाद में ऐसा होता है कि वो बोल रहा है पर उसको ही ड्राइव हो जाता है, क्या बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है, तो आदत हो गया प्रोफेशनल, एक बार व्यासासन पे बैठ गया तो ऑटोमेटिक में लगा के अपने आप बैठ रहा था, वो चलता रहता कुलदान शरीर नहीं आत्मा है देह उसमें नहीं था देह चल रहा, मन में सोच रहा है क्या बोल रहा हूँ, सच में मुझे विश्वास है कि नहीं इसके बारे में। तो कभी कभी इतना देते 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 हृदय खाली पड़ जाता है। कदम कानन महाराज एक बार बोल रहे थे कि भक्तों को देना चाहिए ठीक है, पर देने के लिए कुछ होना भी चाहिए अंदर, अगर कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे हम लोगों को। तो पूरा दिन हम लोगों ने पानी बांट दिया ठीक है, पर रात को थोड़ा भरना तो चाहिए ना कुआं, थोड़ा भरने को टाइम दो। हमारे इधर एक नया जो फार्म लिया है वहां कुआं है, कुआं में पंप लगा के सब हम लोग कर देते, थोड़ा खाली हो जाता ऑलमोस्ट, पर रात को पंप बंद कर देते, क्या होता है धीरे 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 भर जाता, पूरा भर जाता, और फिर सुबह ठीक है देंगे सबको। तो ये जो भरना है वो मैत्री, भक्तों के संग में आकर अपना साधना। अगर इतना प्रचार में व्यस्त है कि साधना के लिए टाइम नहीं है, भरा नहीं, तो धीरे धीरे सूखा लग जाएगा, बोल रहा है पर उसको खुद को विश्वास नहीं क्या बोल रहा है। तो अगर देना है तो कुछ होना चाहिए, और होना है तो कुछ करना चाहिए हमको। होना है तो क्या है? भक्तों के संग में प्रेम मैत्री, अगर ऐसे खास करके इक्वल्स जो समान तरीके के जो लोग हैं, ऐसा हमसे वरिष्ठ जो है वो एक है, हमसे जो कनिष्ठ है उनको हम दे रहे हैं, पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ हम लोग बैठ के हृदय खोल के आदान प्रदान जस्ट रसामृत का आस्वादन करें, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे सम लोगों का संग होना जरूरी है। और एक्चुअली जहां तक इस्कॉन संस्था का सवाल है, 5-6 साल अगर एक भक्त रह गया तो उसको समान ही समझो, हो जाएगा समान ही हो गया। हमारे मंदिर में भी अभी कितने सारे हम लोग थे, पहले 15 साल पहले से थे, अभी जो 6-7 साल से लोग आए हैं उन लोगों को देख रहा हूं मैं, एक्चुअली हमसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं वो लोग, कितने IIT से जितने सारे भक्त लोग आए ऐसा प्रचार कर रहे हैं, हमको क्या लगने लगता है कि मैं कुछ कर रहा था क्या पहले, 15 साल ऐसे बर्बाद हो गया हमारा, ये लोग इतना कर रहे हैं। तो एक्चुअली उतना समय के बाद समान हो जाना चाहिए, सम हृदय खोल कर वो, ऑफकोर्स वो लोग तो सम्मान देंगे, अरे आप इतने पुराने हो, आप तो प्रभु जी, जब वो ब्रह्मचारी आश्रम छोटा था तब आया, अरे छोटा था अभी भी छोटा हमारा हृदय, वो छोड़ दो अभी, पर समान रह, क्योंकि ये मैत्री बहुत जरूरी है अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते। और ऐसे मैत्री, ऐसे सम जहां हृदय खोल कर बातचीत हो जाए, वहां बैठ के साधना करना, हरि नाम लेना, हरि कथा करना, तब हम हृदय को भर रहे हैं थोड़ा। ये भागवत जो है, ये संडे की क्लास नहीं, संडे की जनरल पब्लिक को भी हम लोग थोड़ा बोलते हैं, तो ये भागवत जो है थोड़ा चरणिंग सही में रस को आस्वादन करना बहुत जरूरी। तो प्रेम मैत्री, पर एक चीज है, ये अगर पानी भरना है हर रात को, अगर छोड़े तो पानी भरना है तो आसपास में पानी होना चाहिए, वहां थोड़ा सरोवर है तो वहां से पानी आएगा, समुद्र है कुछ तो होना चाहिए। अगर सूखा है और आप जितना भी अंदर मारो पानी, वो बोर को अंदर मारो, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आसपास में पानी का कुछ है ही नहीं। तो वो क्या है फिर? जीवे दया, जीवे दया तो दिखा रहे हैं, जीवे दया दिखाएंगे तो नाम में रुचि होनी चाहिए, हमको नाम में रुचि होनी चाहिए, मतलब साधना होनी चाहिए, प्रेममयी भक्तों का मैत्री होनी चाहिए, और वो होना चाहिए, वो हृदय में रस आना चाहिए, तो कनेक्शन कहां मिलता है वो? वो रस, नाम रस, नामे रुचि कहां से आती है? शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। भागवत बताता है कि शुश्रूषो, शुश्रूषो मतलब श्रवण करना, श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, तब आएगा वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव में कथा रुचि, वासुदेव के नाम में रुचि, लीला में रुचि अगर आनी है तो स्यात महत सेवया। ऐसे महान भक्त जिनका हृदय समुद्र के समान भरा हुआ है, उनके साथ हमारा कांटेक्ट लगा दे, कनेक्शन लगा दे, तो सप्लाई आता रहेगा कॉन्स्टेंटली। प्राप्तस्य कल्याण गुण अरुणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। संसार भावान ललीढ़ लोका त्रणय कारुण्य घन घनत्व। ऐसा बारिश बरसा रहे हो, उनको कहां से सप्लाई आ रहा है? प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र, कल्याण गुण अर्णव। ऐसे महान संत महात्मा जो निंदादि शून्य, भजन विघ्नम, अनन्य भजन में लगे हुए हैं और निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से वो मुक्त हैं, ऐसे महात्माओं का संग, ऐसे महात्माओं का जब भी मौका मिले उनका सेवा और उनसे श्रवण करना, ये बहुत जरूरी है। तो श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ निषेवना, निषेवना मतलब उनकी सेवा करना। तो आप बोलेंगे महाराज अभी तो ऐसे महाराज तो आते ही नहीं, बहुत कम होता है ऐसे महात्मा, तो कम से कम कोल्हापुर में तो नहीं आते बार बार। क्या करेंगे फिर, क्या किया जाए? एक्चुअली उस तात्पर्य में लिखते हैं रूपा जी, लिखते हैं उसके तात्पर्य में, आज मैं वही देख रहा था कि जब भी हमको ऐसा मौका मिले ऐसे महात्माओं का संग करने के लिए, सच्चा संग मतलब उनसे सुनना है एक्चुअली, ऑफकोर्स वैयक्तिक रूप से उनकी सेवा करना मिले तो सौभाग्य, करना चाहिए, पर शायद हम सबको नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, हर रोज नहीं मिलेगा, तो फिर क्या किए? उनसे श्रवण करना भी उनका संग करने के बराबर है, उनके हृदय में जो वो आस्वादन कर रहे हैं वो बांट रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उनका उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब क्या, उनका खाया हुआ थोड़ा मिल गया तो हम लोग बोलते हैं वाह आज उनका महाप्रसाद मिल गया, तो खाया हुआ उनके हृदय में जो आस्वादन कर रहे हैं वो प्रेम भक्ति कृष्ण, वो कभी कभी मुंह खोल के थोड़ा निकालते बाहर, उसको कान के द्वारा खाया जाता है, उसको मुंह के द्वारा नहीं खाया जा सकता, उनके मुंह से जो निकल रहा है ये हरिनाम हरी कथा, उसको कान के द्वारा हृदय में आस्वादन करना चाहिए, वो भी संग है। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो उसमें आलसी नहीं होना चाहिए, उसमें आलसपन नहीं होना चाहिए, और उसमें थोड़ा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा उदार, थोड़ा लालची होना चाहिए उसकी, इन चीज, उन चीजों के लिए जब भी मौका मिले उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, एक। और दूसरा प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के भागवत है, व्यक्ति भागवत और वो पुस्तक भागवत। पुस्तक भागवत भी उसे अलग नहीं है, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी की, श्रद्धा पूर्वक हर रोज ये समझकर के एक्चुअली प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग है जब हम लोग ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं। व्यक्ति भागवत दो प्रकार से होते हैं, वपु से उनका संग किया जा सकता है और वाणी से उनका संग किया जा सकता है। तो वाणी से हमारा संग प्राप्त है, हर रोज प्रभुपाद अपनी कृपा पूर्वक ऐसे शुद्ध पुण्य तीर्थ निषेवनात् हमारे सामने मौजूद है, पर अगर हम लोगों को सही भावना नहीं है तो उसका पूरा फायदा नहीं लेंगे। अगर सही भावना नहीं है तो वो महात्मा सामने भी आ जाए तो उसका फायदा नहीं ले सकते हम लोग। तो एक हो गया ऐसे व्यक्तियों का संग, संग मतलब हो सके तो शारीरिक रूप से कोई सेवा कुछ नहीं तो कम से कम उनसे सुनना, सबसे एक्चुअली उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, और उनकी सेवा करना मतलब क्या, एक्चुअली उनकी सेवा करना मतलब उनके सुने हुए शब्दों को प्रामाणिकता से पूरी कोशिश करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, वो एक्चुअली संग है, वो एक्चुअली संग है। हम सब सोच रहे हैं, हर रोज सोच रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था ऐसे कर रहे हैं कि नहीं जो कह रहे थे उनका। प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि आपको आपका गुरु का याद आता होगा बार बार, कितना बार आप संग किए? प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में थे कई साल से, और प्रभुपाद ने कहा कभी ऐसा समय कभी ऐसा नहीं लगा जब मैं अपने गुरु से अभिन्न अलग हूं। वो क्यों ऐसा दे पाए? अब प्रभुपाद जी को जीवन देखिए, अकेले व्यक्ति ऐसा कुआं है जिसमें से दे ही दे देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, कहां से उनको इतना आ रहा था? क्योंकि डायरेक्टली परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन था। जब तक परमात्मा के साथ परमानेंट कनेक्शन नहीं हो जाता, जो अनंत अमृत का भंडार है, तब तक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ कनेक्शन है उनके साथ हमको कनेक्शन जोड़ना चाहिए। और कनेक्शन जोड़ने का मतलब ये हो गया। और तीसरा चीज एक हो गया ऐसे व्यक्तियों का संग श्रवण करते हुए और सेवा का मौका हुए तो लेना, दूसरा व्यक्ति भागवत का संग का पुस्तक भागवत का संग करना, और तीसरा प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो आंदोलन है उसमें कुछ जिम्मेदारी लेना, वो भी एक्चुअली संग है। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, उस शरीर की जब सेवा करेंगे तो डायरेक्टली प्रभुपाद जी की हम सेवा कर रहे हैं। तो जो भी हम छोटे मोटे जितना भी कोई भी छोटा एक सेवा दी जाए उसका अगर जिम्मेदारी के रूप से, वो मेरा जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है? सुबह फूल ला के भगवान के सामने रखना, बस कुछ भी हो जाए उसको ला के रखना, ये मेरा जिम्मेदारी, कुछ भी हो जाए पर वो होना चाहिए उस समय में, वो जगह होना चाहिए। मतलब उस जिम्मेदारी को अगर गंभीरता से ले तो एक्चुअली डायरेक्टली हम लोग उस महानुभाव का संग कर रहे हैं। तो ऐसे संस्थान ऐसे आंदोलन में छोटी सी भी, ऐसा नहीं कि बड़े बड़ा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जो भी हमको सेवा मिला है उस सेवा को अपना सर्वस्व मानकर उसको लेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है उसमें से, वो पुण्य तीर्थ निशेवनाथ। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब अपना सात प्रहरे लीला कर रहे थे तो एक औरत थी, बूढ़ी औरत, दुखी, सब बड़े बड़े लोग अभिषेक कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, और अभिषेक करके बर्तन को रख रहे थे, तो उनके जो थोड़े निकटतम पार्षद थे वो बर्तन को ले जाके बाहर रखते थे। और ये बूढ़ी जो थी दुखी, उसका काम यह था बस वो बर्तन, खाली बर्तन जो बाहर पड़ा उसको ले जाना और गंगा पानी भर के लाके बाहर ही रख देना, बस उसका काम वही था। किसी को मालूम ही नहीं था वो कहां क्या सेवा कर रही है, किसी को भी मालूम नहीं कौन क्या सेवा कर रही है, कौन सी सेवा कर रही हो, क्योंकि बाहर से बाहर वहां जाती थी और भर के लाके दरवाजे के पास ही रख देती थी, और उसको भक्त लोग लाते थे और अभिषेक कर रहे। पूरी दुनिया देखती है कि कोई व्यक्ति हो, बाप रे क्या सौभाग्यशाली है इसको अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, पर दुनिया को नहीं मालूम कि दूसरा सेवा जो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, उसको उनको नहीं मालूम, पर महाप्रभु को मालूम है। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, महाप्रभु कहते हैं उसको बुलाओ। किसको बुलाओ? बोले तुम्हारी वो नौकरी जो सेवक है उसको बुलाओ, बोले तुम्हारा नाम क्या है? दुखी। दुखी ये कोई नाम है? आज से तुम्हारा नाम सुखी। इतना ही नहीं, तो जैसे वो सुखी बोले उसके हृदय में प्रेम का भंडार भर दिए, वो एकदम सारे अष्ट विकार उसमें, सात्विक विकार उसमें प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि उसका जो एक तुच्छ सेवा था उसको अपने जीवन, चित्ते थे कोरियो आय क्या आरना कोरियो मोने आशा। तो ऐसे कोई महानुभाव जिनका जो आंदोलन है पूरे प्रचार का, एक डॉक्टर थे उनका नाम था मोदी, उनका आई कैम्प बहुत फेमस है, मोदी आई कैम्प, अभी पता नहीं अभी बहुत पहले थे, हाँ 15-20 साल पहले। अब देखिए मोदी जो है वो कैटरैक्ट ऑपरेशन जो मोती बिंदु है 10 सेकंड में करते हो, 10 सेकंड के अंदर, वो कभी कभी 1,000-2,000 लोगों का एक साथ करते थे। आप बोलेंगे उसको भागवतम क्लास में क्यों लाए? उसमें एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। तो वो जो काम है मोती बिंदु निकालना, वो कार्य सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ही वॉज एन एक्सपर्ट। पर पहले जब वो उतना फेमस नहीं थे तो क्या करते थे, पूरा पेशेंट को प्रिपेयर करना, पेशेंट को लाइन में लगाना, उनका पर्ची लिखना, सब कुछ करने में इतना बिजी थे कि वो ऑपरेशन करने से दो या चार कर पाते थे बस। पर वो जो मोतीबिंदु को ऑपरेशन करने की क्षमता सिर्फ उनके अंदर थी, पर दूसरे लोगों ने देखा अरे बाप रे इतने एक्सपर्ट आदमी है, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है एक काम करते हैं, आपको हम तैयार व्यार करते हैं, पर्ची वर्ची हम बनाते सब बनाएंगे, आपको तैयार करके लाके सामने रखेंगे, सिर्फ आप ऑपरेशन करो भेजो। तो वो जो कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, जो दूसरे लोग करेंगे वो सब हम करेंगे, सिर्फ आपको सामने लाके एक ट्रॉली खड़ा करेंगे, आप निकालो फिर भेजो, वो सब स्टिचिंग विचिंग हम करेंगे। ऐसा करने के कारण हजार ऑपरेशन कर पाए। इसी तरह से हम देखते हैं प्रभुपाद जी हृदय का ऑपरेशन कर सकते, उनके शब्दों में उतनी शक्ति थी, ऐसे चाकू जैसा था साधु के, काटता था किसी का आसक्ति को काट सकता था उनका एक शब्द। और जब अमेरिका में गए तो बेचारे खाना पकाते थे, सबको खिलाते थे, उसके बाद बर्तन धोते थे, सारा काम वही करते थे और ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। पर जब भक्तों ने देखा कि अरे बाप रे ये तो खतरनाक आदमी है, ये अगर सबको किसके पास भी जाएगा तो 100% उसका हृदय का सर्जरी करने वाला है, तो इनको सर्जरी का काम छोड़ के दूसरा काम हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बताओ क्या करना, बर्तन हम धोएंगे, खाना हम पकाएंगे, ये सब करेंगे, सिर्फ आप सांप को लाके हम लोग तैयार करके रखेंगे, आप जाके सर्जरी करो बस। आपको कुछ काम नहीं, आप आराम से लिखो, पुस्तक लिखो, ताकि आप आपके जाने के बाद भी सर्जरी होते रहे, जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा सर्जरी होते रहे, क्योंकि आप हम पुस्तक नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, तो मैनेजमेंट वाले में हम सलाएंगे, आप सिर्फ सर्जरी करो। दूसरे से उनको जो मदद किया वो भी डायरेक्टली सर्जरी कर रहा है, इनडायरेक्टली वो सर्जरी करने में मदद कर रहा है, उसको भी कृपा मिलेगी। जैसे भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सर्वसाची, अर्जुन मेरा योजना है ये सबको खत्म करने का, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगा बस, और तुम करोगे तो तुम्हारी गुण यश होगा, तुम करो। और भागवत बताता है कि तथैव चान्ये नरलो कबीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरावम पार्थास्त्र पूतम पदमापुरस्य। पार्थ अस्त्र, पार्थ ने अपने अस्त्र से जिसको जिसको हृदय ने भेद दिया वो भगवत धाम गया। कैसे, भगवान किसी को मारते हैं तो भगवत धाम जाता है, पर अर्जुन ने मारा तो भगवत धाम कैसे गया, क्योंकि भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन बन गया, भगवान के हाथों में वो साधन बन गया और भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहा था वो, तो इसीलिए वो जिसको मारता था वो डायरेक्टली भगवान के धाम जाता था। इस तरह से प्रभुपाद की इच्छा है कि यह संस्था का प्रचार हो, हमें प्रसार के द्वारा सबको ये भागवत का ज्ञान मिले, और उस उनके नीचे अगर हम एक साधन बन जाए तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, एक क्षण के अंदर हम जैसे मूर्ख फालतू साधन को क्या कमाल करा सकते हैं, हमसे एक जीरो हुआ आदमी को हीरो बना सकते हैं, अफकोर्स पर अहंकार हो गया तो हीरो को जीरो बना देंगे एक क्षण के अंदर, वो भी हमने देखा है इस संस्था में, उसको लगने लगा कि मैं ही भेद रहा हूं, मैं ही सबका उद्धार कर रहा हूं, अच्छा मेन स्विच ऑफ कर देंगे, ठुस सबको चल रहा था, पंखा घूम रहा है, लाइट चल रहा है, पर मेन स्विच और स्विच ऑन किया हुआ है, पर वो मेन स्विच बंद कर दिया, तो देखिए अभी चला तुम्हारा कितना पंखा घुमाते हो तुम, कितना लाइट चलाते हो, कितना किचन गर्म करते हो, ठंडा करते हो फ्रिज में। तो साधना के द्वारा और भक्तों के संग के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, ताकि हम एक शुद्ध साधन बन जाएं भगवान की हाथों में, भगवान हमसे क्या नहीं करा सकते, अगर चाहे तो हीरो को जीरो बना सकते हैं, जीरो को हीरो बना सकते हैं। प्रभुपाद जी 40 साल तक एक भी भक्त नहीं बना, और एक जो भक्त बना चाय नहीं छोड़ा इंडिया में, पर प्रभुपाद जी उत्साह निश्चय धैर्य, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा नहीं है, प्रचार करते रहो, जिसको भी देखो वो बोलते रहूंगा बस, मेरे को क्या आपने बोला है, जारे देखो तारे को बोलते रहोगे बस, नहीं मिला तो नहीं मिला, और फिर 10 साल के अंदर ऐसा मिल गया कि गिनने नहीं हुआ कितने भक्त है, पोस्ट में दीक्षा देना पड़ा, फोन के ऊपर दीक्षा देना पड़ा, इतने लोग, ठीक है आप हीरो बनाए ठीक है, कल हम जीरो थे ठीक है, कैसे आप पीछे, ऑफकोर्स बोलना बड़ा आसान है बैठ के व्यासासन पे, पर सचमुच में अगर हीरो को जीरो बना दिया जाए तो ऐसा धक्का लगता है कि उठना मुश्किल हो जाता है। और ऑफकोर्स भगवान किसी स्थिति में डालते हैं तो सहन करने की शक्ति भी देते हैं, अगर हम सिंसियर हैं वो सहन वो देखने की शक्ति भी देते हैं कि वो भगवान की कृपा है और उस कृपा को कैसा स्वीकार किया जाए वो सहन करने की शक्ति भी देंगे। जिस स्थिति में जब जैसा रखे ठीक है, सीताराम कहिए जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। तो इस तरीके से देना, मेंटेन करना और सप्लाई चालू रखना, मतलब इनपुट इनपुट मेंटेनेंस एंड आउटपुट तीनों चालू होना चाहिए। जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये अगर चलता रहेगा तो हम लोग मध्यम अधिकारी बनेंगे। एक्चुअली हमारा जीवन को ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये तीनों चलता रहे, कुएं से पानी सबको बांटना चलता रहे और बांटा वो भी मरेगा हम भी मरेंगे। इसीलिए उपेक्षा, एक कुएं जो है जिसमें शीतल पानी है, जिसमें अमृत भरा हुआ है, इसमें विष का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मायावादियों से क्या बोलते, भौतिकवादियों से दूर से नमस्कार, उपेक्षा, क्योंकि संरक्षण करने के लिए, तो सेवा बंद हो जाएगा हमारा। अगर करेंगे भी सेवा तो कोई फायदा नहीं उसका, जहर पिला रहे हैं हम लोग, तो उसको लॉक करके रखना चाहिए हमारे कुएं को किन चीजों से कि कोई आके विष ना डाले उसमें। इसीलिए प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये चारों चीज एक साथ चलते रहना चाहिए। यह करोति स मध्यम, यह मध्यम अधिकारी। और ये करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से कब उत्तम बनेंगे हमको नहीं मालूम, उनकी इच्छा है तो बनेंगे ना, उनको कोई इच्छा करने की नहीं है, मध्यम बने रहे, क्योंकि मध्यम मतलब प्रचार, उत्तम अधिकारी करता नहीं प्रचार कभी कभी, उसको भी मध्यम स्तर पे आना ही पड़ता है। तो बेस्ट मध्यम अधिकारी बनकर प्रचार करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। भागवत में दिस इज थर्ड कैंट आई थिंक, गो बैक टू गॉड हेड पदमापुरस्य। क्यों 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 भगवत धाम जाते हैं? तथैव चान्य नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम। ऐसे मारते तो दूसरी बात है, पर कृष्ण मुखारविंदम, क्योंकि पार्थ तो पीछे था, पार्थ पीछे से मार रहा था पर सामने भगवान खड़े हुए थे, तो जो भी अर्जुन को देख रहा था वो सामने, अर्जुन को कौन देखे, कृष्ण को देख रहे थे सब लोग। कृष्ण का मुखारविंद देखते देखते अर्जुन ने मार दिया, सर्जरी हो गया। पर सर्जरी के समय पॉजिटिव एप्रिसिएशन, अरे भगवान का मुखारविंद देखते देखते जो मरा भगवत धाम गया। ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो, नेत्र से वो उस अमृत का, नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, नयन को एकदम अभिराम मतलब पूर्ण तुष्टि करने वाले देख रहे थे, और देखते देखते जब तीर लग गया तो भगवान को देखते देखते मर गए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का एप्रिसिएशन। दोज हू आर नॉन एनवियस, दुर्योधन का पक्ष में थे, बस दुर्योधन था इसलिए उसके पक्ष में थे, तो वो देखते देखते जो लोग शरीर छोड़े तो दे वर एप्रिसिएटिंग कृष्णा स्पेस। तो यहां से शुद्ध हो गया, जैसे पूतना आई, पूतना को तो किया पर उसने पॉजिटिव सेवा कुछ किया, उसीलिए उसको भगवत धाम मिला। पर दूसरे लोग जो ईर्षा से मरे, ईर्षा करते हुए मरे, उनको मुक्ति मिली, पर जो भगवान की एप्रिसिएशन नेत्रे पिबंतो देखते हुए मरे, भगवान की सुंदरता को देखते हुए, अच्छा यार खास बड़ा सुंदर आदमी है, और फिर मर गए, शुद्ध हो गया, तो व्हाट रिमेन इन देयर हार्ट इज पॉजिटिव एप्रिसिएशन।
And we have to consult scriptures.
At least karna ko to mil gaya, isse bol.
मध्वाचार्य एक्चुअली लिखते हैं, कुछ कमेंट्री देते हैं कि जो क्षत्रिय लड़ते लड़ते मरे, कुछ लोग स्वर्ग लोग गए क्योंकि क्षत्रिय का काम कर्म करते करते गए, और कुछ लोग थोड़े समय के लिए गए फिर वापस आ गए, अलग अलग, कोई 3 महीना रहा, कोई 30 कोटि साल रहा स्वर्ग लोक में, अलग अलग।
ये तो भागवत का प्रमाण
है,
इसको भी अर्जुन ने माना, और जो दिव्यार्थ में पॉजिटिव अप्रिशिएशन,
अप्रिशिएशन, या 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 लिव एंड डाई, दैट्स व्हाट भागवत सेज,
नॉट दैट एवरी,
या दुर्योधन ने जिसको मारा, पर कम से कम वो कृष्ण के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में, एक्चुअली उनके अलग अलग चेतना के अनुसार उनको ये था वाम प्रपद्यन्ते, अरे वो ये था वाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव जाम, जैसी उनकी इच्छा है वैसा साधन जोड़ते भगवान, कॉन्शियसनेस आपकी चेतना जैसी है वैसा। कृष्ण का पक्ष क्यों लिए, युधिष्ठिर महाराज के साथ थोड़ा दोस्ती था इसीलिए लिए, क्या कृष्ण नाम मालूम है कि धर्म का सही, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशंस दे गेट रिजल्ट। दो व्यक्ति बाहर से एक ही काम कर रहे हैं पर उनकी चेतना के अनुसार उनको ये मिलता है। विष्णु पितामह बाहरी रूप से विरुद्ध थे पर एक्चुअली वो तो 100% गारंटी था भगवत धाम जाएंगे, वो तो अब कृष्ण ने कंफर्म किया, सामने आके चेहरा देख रहे थे। तो कौन किस पक्ष में था, उन्हें चेतना क्या थी उसकी,
या, या, या।